शांति ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2026 है। आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य जो सुनेंगे। बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को बताया है कि जब आप ये ज्ञान देते हैं तो एक कहानी के रूप में सुनाओ। बाबा ने कहा ये ज्ञान इतना सहज है, जब कहानी के रूप में सुनाएंगे तो सबकी बुद्धि में सहज रीति बैठेगा। और भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की कहानियां सुनते चले आए हैं, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि प्रजा बनाने का, किस प्रकार से प्रजा बनती है। बाबा ने कहा कि जब आप ज्ञान देते हो, बहुत आते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, इतने सारे लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान है, प्रभावित होते हैं लेकिन खुद धारण नहीं करते। फिर क्या कहेंगे, दूसरों को ये ज्ञान सुनना चाहिए। बाबा ने कहा कि जिनके दिल में ये थोड़ा सा भी ज्ञान बैठता है या प्रभावित होते हैं, वह सतयुग त्रेता में आकर के प्रजा पद को प्राप्त करें। यहाँ बड़े बड़े व्यक्ति हैं, ऊंच पद पर हैं, बोलते बहुत अच्छा ज्ञान है, प्रभावित होते हैं और सबको कहते हैं कि ये ज्ञान सुनना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा कि खुद धारण नहीं करते हैं, कभी कहते हैं समय नहीं है, तो वो जाकर के प्रजा में पद पाएंगे। इस प्रकार से प्रजा बनती है। और तीसरी बात बाबा ने कहा, ये ज्ञान सुनाने के लिए कुमारियां बहुत अच्छी तरह से ज्ञान सुना सकती हैं, लेकिन आजकल की फैशन की दुनिया में बुद्धि उनकी वहां लगी हुई है। फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चे भी ये कहानी को बहुत अच्छी तरीके से सुना सकते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आज का प्रश्न है इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है। इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है। इसका उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, दिल को लग गया है, थोड़ा योग भी कर लेंगे लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए मेहनत चाहिए। अब राजा रानी बनना है तो ऐसे नहीं बनेंगे, बाबा कहते हर प्रकार से मेहनत चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। ऊंच पद कैसे मिलेगा, याद करना भी है और कराना भी है। याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवायो खा के, हीरे जैसा अमूल्य जीवन कोड़ी बदले गवाया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था। जैसे गीत के बाद बाबा कहते हैं ओम शांति ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, कहां इतने ऊंच थे और कहां ये आकर के क्या बन गए हैं, ये तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कुछ छोटा बच्चा भी समझ सके। ये ज्ञान इतना सहज है, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, गोदी के बच्चे होते हैं, उनको सिखा देते हैं माँ बाप आत्मा कहाँ है, बाबा कहाँ है, इसकी आत्मा कहाँ है, वो फटाफट बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते। हमें याद आता है भक्ति मार्ग में जब कथा सुनने जाते थे, माँ बाप गए, बच्चे भी साथ में जाते थे और वहां जाकर के बैठ के सुना और प्रसाद खा के आ जाते थे। परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं है, कथा मीन्स बनी बनाई बात होती है, इधर से उधर से कथा करके इतना रोचक बनाते हैं कि सुनने वाले को भी अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते कथा जो है ये बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, ये सब है कथाएं। अब रामायण को इतना रमणीक बना देते हैं और भी कथाएं सुनाते हैं, इतना रमणीक बनाते हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक सुनते रहते हैं। कभी कभी उनको पूछो क्या सुना, वो कथा ही सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बनी बनाई हैं, ये सब हैं कथाएं। रामायण की कहानी भी भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, ये सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? ये है सत्यनारायण की कथा, अर्थात नरसिंह नारायण बनने की सच्ची कहानी। एक एक कहानी सुनना, दूसरा बाबा कहते सच्ची कहानी मीन्स तुम नरसिंह नारायण बनते हो, ये सुनने से तुम नरसिंह नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई ना, नरसिंह नारायण भी बनेंगे और अमर भी बन जाएंगे। ये अमर कथा हुई, तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको हम सुनाएं, तो अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते, कितना समझाओ ये अमर कथा है, अमर लोक की प्राप्ति होगी, परंतु बाबा कहते कितना भी समझाओ कुछ भी समझते नहीं है। शास्त्रों की कहानी सुनने आते, शास्त्रों की कहानी सुनाओ तो सुनते रहेंगे, ये ज्ञान सुनेंगे थोड़ा छोड़ देंगे। शास्त्रों की कहानियां सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, वहां जाके दर्शन करके आएंगे, जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कहेंगे चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। कभी कभी यहाँ भी बाबा के टाइम पर कई लोग आते थे, कहते थे हमें आपके महात्मा का दर्शन करना है। बाबा कहते थे उनको कह दो कोई महात्मा नहीं। अच्छा आपके गुरुजी का दर्शन करना है, बाबा कहते थे उनको कह दो ये परिवार है, यहाँ कोई गुरु नहीं है। फिर कहेंगे अच्छा आपके बड़े जो व्यक्ति उनका दर्शन करना है, तो बाबा कहते उनको कहो दर्शन करके क्या करेंगे, जब तक ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक तो कोई प्राप्ति नहीं है ना, तो दर्शन करने की आदत पड़ी हुई ना। तो बाबा कहते हैं महात्मा का दर्शन कर आए, ये एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचयिता और रचना की कहानी का पता है, सबको माथा टेकते हैं, तो पूछो उनसे कि सृष्टि का रचयिता कौन है, उसकी कहानी क्या है। तो बाबा कहते उनको पूछो, तो वो कहेंगे कुछ भी पता नहीं है। तो कहेंगे नहीं, अच्छा तुम बच्चे समझते हो कि रचयिता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है अंतर। बाबा ने कहा उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं, और तुम क्या कहेंगे, बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम तो समझते हो ना कि रचयिता और रचना की कहानी सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ खड़ा करें। समझ ही लिया ना, अभी क्या करेंगे, है ना, समझ लिया ना। तो बाबा कहते हैं पूछो रचयिता रचना की कहानी का पता है, कहेंगे नहीं। अच्छा अभी तुम बच्चे समझते हो ये रचयिता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्लफ और बे की कहानी कितनी सहज है, अल्लफ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वह कहानी तो ठीक सुन लेते हैं परंतु पवित्र नहीं बनते हैं। समझते हैं कि ये विकारों में जाने की रसम रिवाज भी अनादि है। कितना भी उनको कहो तो कहेंगे क्यों, सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते उनको क्या कहो, क्या तुम सृष्टि के ठेकेदार हो, वो कहेंगे अनादि हैं। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, बाबा देखो बता रहे हैं, एक तरफ कहते अनादि हैं, फिर दूसरा मंदिर में जाते देवताओं के आगे क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर के कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है, इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। फिर बाबा कहते ऐसों को क्या कहे, बोलते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो बाबा कहते ऐसों को फिर क्या कहे, मनुष्य का लकब है, मर्तबा तो है लेकिन दे न सके। देवताएं भी तो मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में, कितने सुखी थे। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, ये तो सब मानेंगे ना। बाबा के तुमको पूछो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था, ये तो सब मानेंगे, ये तो सब मानेंगे ना कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों का राज्य था, वहाँ कोई भी दुखी नहीं था। राम राज्य के लिए कहते ना सदा सुखी थे, तो बाबा कहते वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, उनके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं, उनको 5000 वर्ष हुए हैं, अभी वह नहीं है। बाबा सारी कहानी सुना रहे हैं, अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाबा ने चित्र बनवाया था कि सतयुग का चित्र बनाओ, और एक तरफ सतयुग का मॉडल हो और एक तरफ कलयुग का मॉडल हो, सतयुग में क्या है, कलयुग में कैसे लड़ते झगड़ते दुखी हैं, तो ये मॉडल बनाए थे। तो बहुत आराम से देखते थे, खुश भी होते थे कि आज की हालत क्या है और हमारा राज्य क्या था। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर रहते हैं निर्वाण धाम में, असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम, अभी कहानी किस प्रकार से चल रही सुनो, पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। बच्चों को कहानी सुनाते ना, बहुत समय पहले एक राजा था, उसके राज्य में क्या था, फिर धीरे धीरे कैसे उसका पतन हुआ, तो बाबा ने भी आज ये सारा ज्ञान कहानी के रूप में बताया है। वहाँ बहुत सुख आनंद था, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता है 84 का चक्र, हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था। बाबा याद दिला रहे हैं हमारी दुनिया कैसी थी, वहां हमने क्या किया और वहां क्या था। संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरी जवाहरातों के महल थे। याद आ रहा है? तो बाबा कहते वहां पहुंच जाओ, हीरे जवाहरातों के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, जब राम राज्य में आए तो मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे। अब ध्यान से सुनते जाओ बाबा कैसे कहानी सुना रहे। सतयुग में 9 लाख थे और सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। ये 2 करोड़ जो हुए वो सतयुग के अंत में, फिर त्रेता आया त्रेता के में, फिर बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत में आकर के कितने हो जाते, 33 करोड़। फिर 12 जन्म लिए, त्रेता में भी बहुत सुख चैन में थे। एक ही धर्म था सतयुग और त्रेता में, बाबा कितने बहुत सुख चैन में रहते, वहां पर एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? अब कहानी कैसे सुनाने का तरीका होता है, बाबा बता रहे पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूं। कहानी कैसे बता रहे, राम राज्य और रावण राज्य की कहानी बाबा कहते सहज रीति से समझाता हूं। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब कोई फिल्म देखते हैं तो देखते बैठे रहेंगे, इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक बैठे रहेंगे, इसके आगे क्या हुआ क्या हुआ। तो बाबा कहते कहानी भी ऐसी है, फिर क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बताना चाहिए और क्या हुआ। बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, जो अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुए। कहां एकदम संपूर्ण निर्विकारी, कहां जब विकारी बनने लगे तो क्या हालत होती है, प्रकृति भी उनको तंग करती है। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुए। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कितनी सुंदर कहानी, क्या क्या हुआ, कहां पवित्र थे कहां फिर अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ अंदर चला गया, कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, सतयुग त्रेता हुआ पूरा, अर्थक्वेक हुआ, सब सोने हीरे जवाहरातों के महल अंदर चले गए, थोड़े बहुत बचे, फिर उससे मंदिर बनाए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला आया तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। ये कथा किसकी है, हम बच्चों की। निर्विकारी योगी थे फिर विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है ना, सहज कैसे लग रहा, अच्छी लग रही ना, वहां पहुंच गए ना। ये कहानी कितनी सहज है, छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह भी नीचा हो जाए। जब छोटे छोटे बच्चे ज्ञान सुनाते ना तो बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहते छोटी छोटी बच्चे ये कहानी तो सहज समझा सकते, बड़े भी कहेंगे इतना अच्छा ज्ञान कहां से सुना रही है। तो बाबा कहते हैं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह भी नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म गिरने शुरू हो गए, और धर्म भी आ गए, फिर और धर्म शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले बाबा ने सत्ययुग त्रेता की कहानी सुनाई, फिर कैसे रावण राज्य आते वो सुनाया, कैसे विकारी बने वो सुनाए, फिर और धर्म आने लगे। ये सारी सृष्टि चक्र की कहानी है। बाबा कहते हैं अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कैसे हम गिरते आए, द्वापर से लेकर हम थोड़ा थोड़ा गिरते आए। कलयुग में हम और ही विकारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहते हैं, कभी तो हनुमान की, गणेश की। क्यों बाबा कहते पत्थर की मूर्ति बनाते, पत्थर की मूर्ति क्यों बनाते? बाबा कहते पत्थर बुद्धि हो गए, अब सोना चांदी तो इतना है नहीं जो बनाए, पत्थर तो मिल गया। तो बाबा कहते हैं पत्थर की मूर्ति बनाते रहते हैं, पत्थर बुद्धि होने लगे, तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते हैं भगवान भी पत्थर ठिक्कर भीतर में है। ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई है। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य को, तुम मनुष्य से देवता बन जाए। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि विष छोड़ करके अमृत पियो और देवता बनो। तो बाबा कहती है विष छोड़ो तो देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं, विकारों के लिए कितना तंग करते रहते ना, तो तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने। ये कहानी बता रहे कहां श्रेष्ठाचारी थे, अब क्या हालत हो गई है। फिर जब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या गीता को भूल गए हो? गीता में क्या लिखा हुआ, माम एकम याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव। तो बाबा कहते बाबा बता रहे हैं गीता पढ़ते आए तो क्या गीता को भूल गए हो? गीता रची थी मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का, इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जो भगवान ने ही दी होगी। अगले जन्म में मीन्स उससे पहले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखलाया था, नाम डाला कृष्ण का, तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा के टाइम पर बहनें थोड़ा सा समझाने में होती थी, थोड़ा उनको संकोच होता था, तो बाबा उनको प्रैक्टिस कराते थे। बाबा उनको बोलते थे कि समझाने की प्रैक्टिस करो। और उस समय बाबा के टाइम पर क्या करते थे, बाबा आते थे, कभी मम्मा एक सीट पे बैठती थी गद्दी पे, और कभी एक बहन को सीट पे बिठाया जाता था, और बाबा से पहले उसको कहते थे 5 मिनट ज्ञान का सुनाओ। मम्मा तो सुनाती थी, बहनें भी सुनाती थी, ऐसे बाबा ने प्रैक्टिस कराया। और वो समय था क्योंकि प्रैक्टिस करते थे तो धारणा भी थी, तो धारणा से समझाते थे तो प्रभाव होता था। और आजकल तो जो नई जनरेशन आती है, अभी ज्ञान सुना और ज्ञान सुनते ही क्या, उससे भी अच्छा और समझा देते हैं। लेकिन बाबा कहते दोनों का, ज्ञान योग धारणा का जब बैलेंस होता है तो उसका प्रभाव भी अच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा, कहानी सुनाने में कितना टाइम लगा, है ना? तो बाबा को कितना समय लगा, आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा तो 15 मिनट में सुना दिया, बाबा कहते आधे घंटे में भी इतनी बहस, इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ, हाथ में चित्र ले लो। सचयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य। बाबा कहते कैसे समझाना है, हाथ में चित्र ले लो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य सचयुग में था, त्रेता में राम सीता का, फिर द्वापर आया। तो ये वो सीढ़ी के चित्र को भी बाबा याद करते हैं। कभी कभी बाबा कहते चक्र पर समझाओ, तो बाबा कहते हैं सिर्फ छोटी कहानी बैठ समझाओ, हाथ में चित्र ले लो। सचयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है, बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते, हिंदू भी देवता थे लेकिन वो गुण नहीं रहे हैं, तो फिर अपने को क्या कहते, हिंदू कहते हैं। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हेयर हेयर हो जाए। बाबा को हमेशा बताया, छोटी छोटी बच्चियां जब ज्ञान में आई तो उन्होंने इतना अच्छा समझाती थी, जब जाती थी भाषण करते थे, बाहर वाले भी कहते थे ये छोटी छोटी बच्चियां क्या सुनाती, इतना अच्छा सुनाते। अभी भी बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां ऐसे भाषण करें तो सभा में हियर वंस वंस मोर करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो क्या करना है, बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो बाबा कहते छोटी छोटी बच्चियों को तैयार करो और छोटी छोटी बच्चियां सुनाए और कुमारियां सुनाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियां सब हाथ खड़ा करो, सब कुमारियां, ये तो थोड़ी बैठी है ना, तो कितनी कुमारियां। बाबा जब कुमारियों को देखते थे ना बाबा बहुत खुश होते, और बाबा क्या कहते अगर मैं कुमारी होता तो मैं तो कितनी सेवा में भाग दौड़ करता। बाबा हमेशा कहते मैं अगर कुमारी होता, बाबा कुमारियों को देख करके नशा भी बहुत चढ़ाते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे ये कुमारियां ही कमाल कर सकते हैं। शास्त्रों में भी गाए ना कुमारियों ने ही भीष्म पितामह आदि को तीर लगाए। तो बाबा कहते कुमारियां क्यों नहीं खड़ी होती है, क्यों नहीं ये भागती है, क्यों नहीं सेवा करती है। तो बाबा को बहुत होता था, अभी तो बहुत कुमारियां तैयार होती भी जा रही हैं। कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है, दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं। उस समय बाबा के टाइम पर दिल्ली में बहुत छोटी कुमारियां निकली थी, जैसे चक्रधरी बहन है, सुरेश बहन है, सुरेश, ये सब दिल्ली से है ना, और भी बहुत कुमारियां थी। अब किस किस के नाम बताएं, बॉम्बे में भी बहुत कुमारियां थी, पंजाब में भी बहुत कुमारियां निकली थी। आज वो बड़े बड़े सेंटर संभाल रहे हैं। उस दिन भी आपने सुरेंद्र बहन, बनारस बहन, बनारस की सुरेंद्र बहन का सुना, वो भी पंजाब से है। नेपाल की राज बहन भी पंजाब से है। ऐसे पंजाब से भी बहुत कुमारियां निकली, दिल्ली बॉम्बे में भी बहुत कुमारियां थी। तो बाबा कहते हैं दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने इतना उमंग भरा तो कितना सेवा में उड़ने लगे, कितना काम कर सकती हैं। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। बाबा कहते कुमारियां तो फ्री है, कोई बंधन नहीं, अगर ये जाके सेवा करें तो नाम भी बाला हो जाए। साहूकार घर की जो होती हैं वह मुश्किल ही हिम्मत रखती हैं। साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस समझते हम साहूकार है, बहुत पैसा मिलेगा, ढेर सारा दहेज ले लेती है, फिर जाती है दूसरे जीवन में दुखी होकर के फिर वापस आ जाती हैं। तो बाबा कहते दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारी शादी कर काला मुंह कर देती है और फिर सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल भी नहीं रखते, इतना सहज बाबा समझाते हैं। बाबा कहते बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि हम पारस बुद्धि बने। बाप कितना सहज समझाते हैं परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल एमपी एमएलए आदि बन गए। एक जमाना था आदिवासी थे जो नहीं पढ़ते थे, गरीब थे, नहीं पढ़ते थे, आजकल वो पढ़ाई करते, गरीब हैं या अन्य कास्ट के हैं तो वो भी पढ़ करके क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। तो वह भी एमपी एमएलए आदि बन गए हैं, पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। बाबा ये क्यों बता रहे हैं कि सब बच्चे अगर पढ़ाई अच्छी करें तो ऊंच पद के आस पा सकते हैं, कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, तो बाबा कहते पढ़ाई से वो दुनिया में भी क्या से क्या बन जाते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई करेंगे तो क्या से क्या नहीं बन सकते हैं, पढ़ाई से क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, लौकिक पढ़ाई तो फिर भी कठिन है। बाबा कहते ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। श्रीमत पर नहीं चलते तो ना खुद पढ़ते हैं ना फिर औरों को पढ़ाते हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ। क्या नशा चढ़ा, हम क्या नहीं कर सकते, हम लौकिक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अपने ही नशे में रहती है, फिर जब कुछ नहीं मिलता फिर पश्चाताप भी करते हैं। तो बाबा कहते बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है, थोड़ा काम किया तो समझती हमने बहुत काम किया। अभी भी ऐसे ही थोड़ी सी सेवा करेंगे बोलेंगे हमारी जैसा सेवा कोई नहीं कर सकता, हम ही सब कुछ करते। तो जो नशा ऐसा चढ़ जाता ना तो फिर खुशी नहीं रहती है, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा काम किया तो समझती हमने बहुत काम किया है। अभी तो बहुत काम करना है, थोड़ी सी सेवा की बोला बहुत सेवा की है, हमारा नाम मान होना चाहिए, अच्छा वो मिल जाए, लेकिन बाबा कहते अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में भी कितना पैसा देते। बाबा के टाइम पर जापान से आई थी और वो कोई ना कोई ऐसे आए थे और ने जापान में ऐसे ऐसे जुड़ा करके वो बनाते हैं, तो बाबा कभी कभी हंसी में कह देते थे घोंसले की तरह बनाया है, क्योंकि बहुत खर्चा होता था ये सब है ना, तो उनसे पूछते थे बताते थे फैशन में जब जाते हैं तो काफी खर्चा करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कितना खर्चा करते हैं, ये है माया का पंप, फॉल ऑफ माया रावण राज्य। अब क्या है फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। बाबा ने एक बार लिखा आया था कि चित्रों में लिख लो फॉल ऑफ रावण राज्य एंड राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है परंतु तुम मेहनत तो करो ना, राम राज्य स्थापन करना है तो बच्चों को क्या करना है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना, तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। जैसे लौकिक में भी माँ बाप क्या कहते बच्चों को, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो ये क्या बरी ढोएगा, क्या बोरी उठाएगा, क्या पढ़ोगे तो तब तो ऊंच पद पाओगे। तो आज बाबा भी क्या कह रहे हैं, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। प्रजा में भी पाई पैसा, कोई शाहूकार प्रजा, कोई उससे ऊंच, कोई उससे नीच, कोई एकदम नीच है। तो बाबा कहते हैं अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। पाई पैसे की प्रजा समझते क्या, बहुत छोटा काम करने वाले। आजकल के बड़े बड़े आदमी भी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन धारण नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल के ये बड़े बड़े आदमी भी वहां की प्रजा में सब आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहे अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। और फिर क्या करते हैं, आखिर में क्या होगा, प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ, थोड़ा बहुत किया, सेवा की, बाबा के तो उससे थोड़ी कुछ मिलेगा, तो जाकर के प्रजा में बनेंगे। आखिर में क्या होगा, वहां जाकर प्रजा ही बनेंगे। प्रभावित माना ही, अब बताओ, प्रभावित होना माना ही प्रजा बनना। अगर प्रभावित हुए, धारणा नहीं किया, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो प्रजा होंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझाने तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा ही पार हो जाए। आज बाबा ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है, बाबा कितनी कहानी का मनन करते हो, इसके नशे में रहेंगे तो बेड़ा ही पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते और कराते रहना, खुद भी याद करना है और कराते रहना। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते और कराते रहना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। फिर बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं, बाबा भक्ति में क्या करते थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने पास रखते थे, नारायण का चित्र रखते थे, बाबा उस चित्र को देख करके बहुत खुश होते थे कि उसमें तो बाबा को पता नहीं था कि मैं ये बनने वाला हूँ, लेकिन बाबा अपने पास चित्र रखते थे ना। तो बाबा कहते हैं अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था, बाबा के जेब में हमेशा ही नारायण का चित्र रहता था, तो बाबा उसकी पूजा भी करते थे लेकिन चित्र जो जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं। उस समय पर तो बहुत छोटे छोटे चित्र भी होते थे, लॉकेट में गीता भी होती थी, फिर बाबा के टाइम पर भी बहुत छोटे छोटे चित्र भी थे, और ऐसे छोटे छोटे चित्र होते थे। बाबा कहते थे जैसे ना आधे हाथ जितना होता था, बाबा कहते थे इसको अपने पॉकेट में रख लो, पर्स में रख लो, बार बार देखो, मनन करो, कोई मिले तो उसको समझाओ। तो बाबा कहते हैं लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। लॉकेट क्या है, ये बैज, बाबा कहते उन पर समझाना है, ये है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। बाबा हमेशा कहते थे बैज लगाकर रखो और कोई भी पूछे उसको ज्ञान सुनाओ। और अभी भी बैज को देखते हैं ना, लोग पूछते हैं ये क्या है। अभी तो ऐसा हो गया बैज उनको इतना अच्छा लगता, कहते हमको ये बैज दे दो, हम खरीदना चाहते हैं। अरे उसको ज्ञान ही नहीं, बैज लेके क्या करेगा। बाबा कहते पहले उनको समझाओ। तो बाबा कहते चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है, ये है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स, कौन से किसमें, बैज में, इनमें सारा ज्ञान है। बैज में देखो तो पूरा ज्ञान है, ऊपर शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति, फिर लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते इसमें इतनी नॉलेज है, आप इस पे समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उन पर समझाना है, इन कितनी नॉलेज है इन मेडल्स बैज में, इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा, क्या समझाना है, सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। अब बाबा ने सबको जिम्मेवारी दिए, कोई भी समझाए तो क्या मिलेगा, जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाएगा, बाकी पढ़ाई अनुसार पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में तो आएंगे ही सही। बाबा ने पहले भी बताया था, लास्ट टाइम जब होगा तो क्या होगा, ढेर के ढेर आते जाएंगे, पिछाड़ी में तो बहुत आएंगे लेकिन क्या होगा, थोड़ा बहुत सुनेंगे प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में तो आएंगे तो ही सही, बुद्धि तो वृद्धि तो होनी ही है। बाबा बता रहे हैं वृद्धि तो होनी है, सर्विस करने वाले ही ऊंच पद अच्छा पद पाएंगे, उनका नाम भी वाला है। आज बाबा ने याद किया है जैसे कुमार का है, दादी प्रकाशमणि को बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया हुआ था कुमार का, तो बाबा उनको कुमार का कहते थे। जैसे कुमार का है, जनक है, दादी जानकी को बाबा हमेशा कहते जनक कहते थे, जैसे कुमार का है जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं, कोई भी खिटपिट नहीं, दादी जहां गई सेंटर को हरा भरा कर दिया, और दादी जानकी भी जहां गई सेंटर ही सेंटर, सेवा ही सेवा। तो इसके कारण से ही जैसे विदेश सेवा आरंभ होनी थी तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जानकी का नाम लिया, यही जाए। दादी जानकी कहे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, बाबा ने कहा तुम्हारी इंग्लिश नहीं तुम्हारे वाइब्रेशन काम करेंगे, और दादी गई तो क्या नहीं सेवा बढ़ती गई। और दादी वहां जाकर के बैठती, एयरपोर्ट पे बैठती, इंग्लिश में लोग कहते इंग्लिश नहीं जानती है, और दादी इंग्लिश सब कुछ समझ जाती थी, तो कितनी अच्छी सेवा करती थी। तो बाबा कहते उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई भी खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते। बाबा ने कहा पर चिंतन मत करो, फिर भी करते रहते हैं ऐसे ऐसे, क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं, छोटी छोटी कुमारियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं, बंदर सेना भी मशहूर है। अब बाबा कोई बंदर सेना थोड़ी लेंगे, बाबा कहती है जो ऐसे बन गए हैं वो भी अच्छे बन सकते हैं। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं उनको भी छुड़ाना है, कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। बाबा के टाइम पर जब सेवा होती थी बहने बाबा को पत्र लिखती थी, बाबा ये फलाना व्यक्ति आया बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। बाबा कहते थे तुम ही प्रभावित हुए, वो हुआ या नहीं हुआ, बाबा सर्टिफिकेट दे देते, अरे तुम प्रभावित होगी, उसने बाबा को समझा, ज्ञान को समझा, जीवन बनाने का लक्ष्य रखा, तो बाबा लिखते थे उसको तुम ही प्रभावित हुई। फिर कभी कभी बाबा लिखते थे उसने कुछ भी नहीं समझा, तो बाबा कहते प्रभावित होना मीन्स प्रजा बनेगा, उसको समझाओ कम से कम ऊंच पद पढ़े बने और ऊंच पद ले पढ़ाई करे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, प्रभावित तो हुआ। बाबा कहते उनसे पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, जो प्रभावित हुआ ना क्या कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा, ये ज्ञान सबको सुनना चाहिए, गांव गांव में सुनाना चाहिए, अरे तुम क्या करोगे सबको सुनना चाहिए। तो बाबा कहते उनको क्या कहूँ, कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद कुछ भी समझते नहीं, इससे क्या फायदा होगा, उनको तो फायदा नहीं मिला ना, दूसरे जो सुनेंगे उनको तो फायदा मिलेगा। बाबा कहते खुद को क्या फायदा हुआ, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना। बाबा हमेशा कहते हैं श्रीमत पर चल, पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना। साहूकारों का नशा रहता ना, हमारे पास इतना है, हमने इतना कि हम क्या नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि का नशा छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा, हियर नो इविल सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना। जब प्रभावित हो जाते ना, कितना भी समझाओ बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो बहुत अच्छा, लेकिन कितना उसने धारण किया वो तो पता ही नहीं रहता ना। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर भी प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्य नारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान, नए जीवन की समृद्धि से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की समृद्धि से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर जीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। आती है ना माताएं, मर जीवा का भोग लगाना है। अब बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा कहते जो बच्चे पूरा मर जीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु भी समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। अब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की निशानी क्या है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का भी जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ भी ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित कर नहीं सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई भी स्नेह आकर्षित कर नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इस महीने का जो अव्यक्त टाइटल चल रहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, तख्त पे बाबा ने बिठाया, तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। बाबा ने क्या बताया, इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे सबके आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी जो भी भाई बहने, अच्छा एक सूचना, वैसे बोर्ड पे तो लिख ही दिया, पांडव भवन के समर्पित भाई बहने, जो भी समर्पित भाई बहने हैं, आज प्रातः दादी, आप सबको मालूम है दादी रत्नमोहिनी जी की प्रथम पुण्य तिथि 8 अप्रैल थी, उनके निमित्त आज प्रातः 11 बजे मधुबन के हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे, जहां पर लीला बहन आएगी और सबसे मिलेगी और दादी रत्नमोहिनी जी के निमित्त या सौगात भी देंगे। और जो भी समर्पित भाई बहने अपने साथ स्मार्ट कार्ड अवश्य ही लेकर के आए। अच्छा, बाकी जो भाई बहने शांति वन से आए वो हाथ खड़ा करें, जो भी टीचर बहने जो भी आए सब हाथ खड़ा करें। अच्छा, वेलकम। जो एक रात के लिए वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो आज सुबह सुबह 4 बजे आए वो हाथ खड़ा करें। कई कई सुबह सुबह 4 बजे आ जाते हैं ना। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि आप सभी का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग में हॉल में होता है। कभी कभी नीचे बैठ जाते हैं तो नीचे कारोबार चल रहा है, वहां पर स्थान नहीं है। फिर से बता रहे हैं कि सभी का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। अगर कोई नहीं चढ़ सकता तो वहां पर लिफ्ट भी है, लिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनी डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वर सिटिंग हियर, डबल फॉरेनर्स प्लीज रेज योर हैंड। ओके, 1, 2, 3, 4 ब्रदर्स, हु इज लिविंग टुडे, इज एनीवन इज लिविंग टुडे, नो, आई लिविंग टुमारो, ओके, वेलकम। बाबा'स होम इज देयर, बाबा टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। और आप सभी